ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरे नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः।
हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम स्कंद 8 अध्याय 4 श्लोक संख्या 15। आप लोग हमारे पीछे आवृत्ति करिए।
यथानुकीर्तयन्ते तत् श्रेयस्कामादिजातयः सूचयः प्रातरुत्थाय दुःस्वप्नादिपशान्तये। यथानुकीर्तयन्ते तत् श्रेयस्कामादिजातयः सूचयः प्रातरुत्थाय दुःस्वप्नादिपशान्तये। यथानुकीर्तयन्ते तत् श्रेयस्कामादिजातयः सूचयः प्रातरुत्थाय दुःस्वप्नादिपशान्तये।
बोलिए। माताजी, शब्दार्थ
यथा विचलित हुए बिना अनुकीर्तयन्ति कीर्तन करते हैं एतत् गजेंद्र मोक्ष की यह कथा। श्रेय कामाः अपना कल्याण चाहने वाले द्विजातयः ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैश्य जाति वाले सूचयः विशेषतया ब्राह्मण जो सदा स्वच्छ रहते हैं प्रातः काल उत्थाय निद्रा से उठकर दुःस्वप्न आदि रात्रि में ठीक से नींद न आने उपशांतये सारे कष्टों को समन करने के लिए
अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। अतएव जो लोग अपना कल्याण चाहते हैं, विशेष रूप से ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैश्य और इनमें से भी मुख्यतः ब्राह्मण वैष्णव, उन्हें प्रातःकाल बिस्तर से उठकर अपने दुस्वप्नों के कष्टों का प्रतिकार करने के लिए इस कथा का बिना विचलित हुए यथारूप पाठ करना चाहिए। तात्पर्य, वैदिक साहित्य का और विशेषतया श्रीमद् भागवत तथा भगवद गीता का प्रत्येक श्लोक एक वैदिक मंत्र है। यहाँ पर प्रयुक्त यथानुकीर्तयंती शब्दों से संस्तुति की गई है कि इस साहित्य को यथारूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, किंतु ढोंगी लोग वास्तविक कथा से हटकर अपने व्याकरण गीत वाग्जाल से मूल पाठ का मनमाना अर्थ निकालते हैं। इस तरह के हेर फेर से बचना चाहिए। यह वैदिक आदेश है जिसका समर्थन श्री सुखदेव गोस्वामी जैसे महान जन द्वारा किया गया है। वे कहते हैं यथानुकीर्तयंती, मनुष्य को चाहिए कि कोई फेर बदल किए बिना मंत्र का यथारूप पाठ करे, क्योंकि तब उसे सौभाग्य के पद तक उठने की योग्यता प्राप्त हो सकेगी। सुखदेव गोस्वामी ने तो विशेष संस्तुति की है कि ब्राह्मण लोग प्रातःकाल सैया से उठते ही इन सभी मंत्रों का पाठ करें। पाप पूर्ण कर्मों के कारण हमें रात में दुस्वप्न आते हैं जो अत्यंत कष्टप्रद होते हैं। महाराज युधिष्ठिर को तो भोगत भक्ति में थोड़े से विचलन के कारण नरक दर्शन करना पड़ा था, अतएव दुस्वप्न पाप पूर्ण कार्यों के फल स्वरूप आते हैं। भक्त कभी कभी किसी पापी व्यक्ति को अपना शिष्य बना लेते हैं और अपने शिष्य से शिकार किए गए पाप कर्मों के फल को समाप्त करने के लिए भक्त को बुरे स्वप्न देखने पड़ते हैं। फिर भी गुरु इतना दयालु होता है कि अपने पापी शिष्य के कारण दुस्वप्न देखने पर भी वह इस कष्टदायक कार्य को कलयुग के भुक्त भोगियों का उद्धार करने के लिए स्वीकार करता है। अतएव दीक्षा के बाद शिष्य को सतर्क रहना चाहिए कि वह फिर से कोई पाप पूर्ण कर्म न करे जिससे स्वयं उसे तथा उसके गुरु को कोई कठिनाई उठानी पड़े। अतएव सच्चा शिष्य अर्चा विग्रह अग्नि गुरु तथा वैष्णव के समक्ष वचन देता है कि वह सभी पाप पूर्ण कार्यों से दूर रहेगा, इसलिए उसे पुनः पाप पूर्ण कृत करके कष्टकारी परिस्थिति उत्पन्न नहीं कर लेनी चाहिए। ओम अज्ञानते मिरांधर्ष्ट ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर मिलतम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम्। वंदेहं श्री गुरु श्री उत्पदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। एक बार जैसा कि आप लोग प्राय सुनते होंगे कि अकबर और बीरबल की कथा बहुत प्रसिद्ध है, बहुत ही शिक्षाप्रद कहानियां भी हैं उन दोनों की वार्ताओं में। एक बार अकबर ने बीरबल को बुलाया, और बीरबल से कहा अकबर ने कि बीरबल आप मुझे कोई ऐसी चीज बताओ जिसके द्वारा यदि मैं जीवन में दुखी हूं तो वो चीज सुनने के बाद पढ़ने के बाद या वस्तु मिलने के बाद हमारे जीवन में हमको सुख की अनुभूति हो। जब मैं दुखी हूं तो मेरे जीवन में सुख की अनुभूति हो। और जब हमारे जीवन में सुख आए तो तुम्हारे द्वारा बताई गई चीज को सुनने के बाद, पढ़ने के बाद या मिलने के बाद, वो वस्तु प्राप्त होने के बाद मुझे दुख की अनुभूति हो। अर्थात यदि मैं दुख में रहूं तो सुख की अनुभूति हो, और सुख में रहूं तो दुख की अनुभूति हो। प्रश्न बहुत विचित्र है। बीरबल ने कहा, महाराज हमको थोड़ा समय दीजिए। बोले ठीक है। दूसरे दिन बीरबल अकबर से मिलता है और बोलता है, एक उत्तर मिल गया। अकबर ने कहा, क्या है वो उत्तर? बीरबल ने कहा कि जहां आप सोते हो वहां एक सेंटेंस लिख दो आप। बोले क्या लिखूं? तो बीरबल ने कहा, वहां लिख दीजिए कि यह समय बीत जाएगा, यह समय बीत जाएगा। अर्थात बहुत सुख में है तो जब आप लाइन पढ़ लेंगे यह समय बीत जाएगा तो आप दुखी हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे, अरे अरे ये सुख ऐसे ही नहीं रहने वाला है। और आपके जीवन में बहुत निराशा रहेगी, बहुत दुख रहेगा, तो जब आप उस सेंटेंस को पढ़ेंगे तब आपको आनंद आएगा कि चलो ये दुख भी बीत जाएगा। तो अपने शयन कक्ष में एक लाइन का आप ये सेंटेंस लिख दीजिए, यह समय बीत जाएगा। शंकराचार्य गीत गोविंद में भी यही चीज लिखते हैं, नलिनी दलगन जलमति तरलम। जिस प्रकार कमल के पत्ते पर जो बूंद होता है, और बूंद कभी स्थिर नहीं हो सकता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में बहुत सारी स्थितियां परिस्थितियां आती हैं, कभी सुख में कभी दुख में, लेकिन कोई भी परिस्थिति स्थिर नहीं रहने वाली है। तो शंकराचार्य बताते हैं कि जिस प्रकार यदि कमल के पत्ते पर पानी पड़ा हुआ है, बूंद पड़ा हुआ है, तो कभी भी लुढ़क के किधर चला जाएगा कोई भरोसा नहीं, वो स्थिर नहीं हो सकता है। उसी प्रकार जीवन में अनेक सारी परिस्थितियां आती हैं, सुखमय और दुखमय, और व्यक्ति को सब कुछ सहन करते हुए जीवन में चलना चाहिए, क्योंकि कोई भी परिस्थिति स्थिर संसार में नहीं रहने वाली है। भगवद गीता में भगवान यही चीज बताते हैं, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। तुम युद्ध करो, कर्म करो, लेकिन सुख दुख लाभ हानि जय पराजय की इच्छा से ऊपर उठकर, क्योंकि सभी चीजें अस्थिर हैं, कोई भी चीज यहां स्थिर रूप से नहीं रहने वाली है। तो चाहे वो भक्त हो चाहे अभक्त हो, तो सामान्य भौतिक जगत का जो नियम है, शोक दुख चिंता व्याधि, ये किसी को भी नहीं छोड़ेगी। चलो ये संसार दावानल है, संसार में सभी लोग जल रहे हैं, लोगों का ज्ञान नहीं है, लोग अज्ञान में पड़े हैं, हम मंदिर में चले जाते हैं, हम मठ में चले जाते हैं, हम साधु बन जाएंगे, लेकिन हम लोग भी साधु बनने का प्रयास कर रहे हैं, संसार अच्छा नहीं लगा इसलिए इधर आए, और इधर आने के बाद भी हम अनुभव जीवन में कर सकते हैं कि ऐसा नहीं कि हम राइट संसार की जो प्रकृति का नियम है वो हमारे ऊपर काम नहीं कर रहा है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमारे सभी मंदिर वैकुंठ हैं, वास्तव में हैं, लेकिन फिर भी क्या हम उसकी अनुभूति कर पाते हैं? नहीं। चिंता शोक दुख हमारे जीवन में भी है, सबके जीवन में है, ये किसी को नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो भक्त हो चाहे वो अभक्त हो। प्रभुपाद जी के लेक्चर में कहते हैं, इंग्लिश लेक्चर है, वीडियो लेक्चर, प्रभुपाद जी वहां सेंटेंस बोलते हैं, इवन यू आर लिविंग इन द टेम्पल, यदि आप मंदिर में भी रहते हो तो भी जो सामान्य प्रकृति के नियम है इतने आसानी से हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। जिस प्रकार यदि समुद्र किनारे आप खड़े हो जाइए तो आप कभी नहीं देखेंगे कि समुद्र स्थिर हो गया। समुद्र में लहरों का वेग आते ही रहता है, आते ही रहता है, आते ही रहता है। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी कुछ न कुछ वेग आते ही रहेंगे। कभी काम का वेग आएगा, कभी क्रोध का वेग आएगा, कभी लोभ का वेग आएगा, कभी मोह का वेग आएगा। एक एक वेग के समान है। और कभी कभी ये वेग इतने प्रचंड होते हैं, इतने प्रतिभाशाली प्रचंड वेग के रूप में आते हैं कि हमको लेके चले जाते हैं। भक्ति जीवन में भी, भक्तों के जीवन में भी देखा जाता है कि अरे वो थे और चले गए। क्यों चले गए? ऐसे ही नहीं चले गए, कोई ना कोई जीवन वेग आया और लेके गया। मंदिर से भी, शहर दीवारी से भी निकाल के लेके चले जाते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं इवन यू आर लिविंग इन द टेम्पल। ऐसे तो ब्रह्मा जी अपनी स्तुति में कहते हैं ब्रह्म संहिता में कर्माणि निर्दहति च किंतु किंतु च भक्ति भाजाम, कि जब हम सर्वस्व त्याग कर भगवान की शरण में आते हैं और भगवान की भक्ति प्रारंभ करते हैं, गुरु का आश्रय लेते हैं, दीक्षा लेते हैं, तो उस समय हमारे समस्त पूर्व कर्म खत्म हो जाते हैं, कर्म फल सब स्वाहा हो जाते हैं। यदि हमारे समस्त पाप कर्म खत्म हो गए तो भी हमारे जीवन में दुख क्यों आता है? तो ब्रह्मा जी जो चीज लिख रहे हैं वो महाजन हैं और वो गलत चीज नहीं लिख रहे हैं। वास्तव में जब हम भौतिक जगत का त्याग करके आध्यात्मिक गुरु स्वीकार करते हैं, भगवान की शरण में आते हैं और भक्ति प्रारंभ करते हैं, तो भगवान के नाम में, जैसे भगवान नाम की महिमा सुनते हैं, हरि नाम की महिमा सुनते हैं, तो नाम की महिमा क्या सुनते हैं कि भगवान के एक नाम में उतनी सामर्थ्य है, उतनी शक्ति है कि जितना जीवन भर हम पाप कर भी नहीं सकते हैं। इतना मुक्त करने की क्षमता है भगवान के नाम में। फिर भी श्री श्रीराधराज बिहारी भगवान, श्री सीताराम लक्ष्मण, श्री गौणिताई भगवान की, हरे कृष्ण, फिर भी जीवन में विभिन्न कठिनाइयां क्यों आती हैं? तो उसका आचार्य लोग सामान्यतः अर्थ निकालते हैं, गुरु वैष्णव का कोप भाजन, उनकी असंतुष्टि से हमारे जीवन में सब वेग आते हैं। और भागवत में बहुत सारे प्रमाण हैं, आप देख सकते हैं। वर्तमान प्रसंग भी चल रहा है, गजेंद्र इंद्रदुम्न महाराज के नाम के राजा थे, हुहु ये भी एक गंधर्व थे, एक वैष्णव अपराध किए छोटा सा, जितने भी वृत्तांत, जितने भी इतिहासकार कथा का वर्णन है भागवतम में, सब चीजों में यही देखेगा कि वास्तव में जो भक्त हैं, जैसे गजेंद्र हैं, मगरमच्छ के रूप में हु नाम का गंधर्व है, आप परीक्षित महाराज के जीवन को भी ले लीजिए, आप चित्ररथ जिनको पार्वती माता ने श्राप दिया था, चित्ररथ या चित्रकेतु, नल कुबेर नारद जी ने श्राप दिया था, जय विजय चार कुमार ने श्राप दिया था, तो ये लोग का यदि जीवन देखेंगे तो अध्यात्म में बहुत हायर स्टेज पे थे ये लोग, वो सामान्य धरातल पे नहीं थे। जय विजय सदैव भगवान का सानिध्य प्राप्त करते थे, उनके साथ में ही रहते थे, लेकिन फिर भी वैष्णव कोप के कारण, वैष्णव क्रोध के कारण उनका इस संसार में उनका पतन हुआ, उनको आना पड़ा। परीक्षित महाराज कोई सामान्य राजा नहीं थे, जिन्होंने भगवान का भी दर्शन किया था, लेकिन एक वैष्णव का तिरस्कार करने कारण, साधु का तिरस्कार करने कारण, प्यास के छुदा बस एक साधु का तिरस्कार कर दिया उन्होंने, राइट, और फिर उसके पुत्र के द्वारा उनको श्राप मिला। तो ये सब बहुत बड़े बड़े भक्त हैं और इनके जीवन में भी बहुत बड़ी कठिनाई आई है, किसी रूप में आई, खासकर साधु का श्राप उनको मिला, साधु के क्रोध का भाजन होना पड़ा। तो भक्त के जीवन में भी दुख आ सकता है, आता है, और अभक्तों के जीवन में भी दुख आता है, और प्रायः भक्तों के जीवन में भी दुख आ रहा है। तो यहाँ से हमें शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं कि भक्ति में, भगवान के नाम में, सेवा में वो ताकत है कि हमारे समस्त कर्म फल जिसके कारण हमको दुख भोगना पड़ता है वो समस्त कर्म फल स्वाहा हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, हमारे ऊपर इतना इफेक्टिव नहीं हो सकते हैं। लेकिन जीवन में कुछ भी ऐसा होता है, वेग यदि आता है, तो जरूर कहीं न कहीं वैष्णव के क्रोध के कारण है। और इसीलिए हमको बार बार ये सतर्क किया जाता है, यदि हम भगवान का भजन करते हुए जीवन में पूर्णता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमको क्या नहीं करना चाहिए, वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए, वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबसे प्रमुख कारण है ये जीवन में, यदि भक्ति के जीवन में होता है तो। इसलिए बार बार हमको सतर्क किया जाता है। तो भक्त अपराध करने के कारण, भक्त निंदा करने के कारण, भक्त की हंसी उड़ाने, इन लोगों ने बहुत बड़ा बड़ा अपराध नहीं किया था, हंसी में जाकर पैर पकड़ लिया हु ने खेलते खेलते, लेकिन वो लग गया। इसलिए ऐसा भी कहा जाता है कि भक्ति में प्रमाद ठीक नहीं है, बहुत बचना चाहिए। प्रमाद मतलब हंसी मजाक, भगवान के सामने है, गुरु के सामने है, वैष्णव के समाज में है, तो हंसी मजाक में भी या शरीर से मजाक में भी बहुत ही सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि इसकी हर जगह सीमा है। जाने अनजाने हमने मजाक किया लेकिन वैष्णव ने किस रूप में लिया पता नहीं। इसलिए भक्ति में भक्ति जन्य प्रमाण ठीक नहीं है। रूप गोस्वामी सेवा अपराध के अंदर भक्ति रसामी संधु में बताते हैं कि जब भगवान के सामने खड़े होते हैं तो भगवान के सामने खड़े होकर हमको हंसी मजाक भी नहीं करनी चाहिए, बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि एक अपराध हो जाता है। तो इनके जीवन में देखा जाता है, जिनके जिन भक्तों का हमने नाम लिया, तो बहुत बड़ा अपराध इन्होंने नहीं किया था, लेकिन फिर भी जाने अनजाने वैष्णव अपराध हो गया और उसका उनको सजा मिला। लेकिन सबसे बड़ी शिक्षा इसमें यह है कि हम लोग साधक भक्त हैं और हमारे जीवन में भी ऐसे मोड़ आते हैं, जाने अनजाने वैष्णव अपराध हो जाते हैं, वैष्णव क्रोध करते हैं। तो जितने भी भक्तों का जीवन भागवतम में बताया गया उसमें हम देख सकते हैं कि वैष्णव का क्रोध उनको जीवन में आया, सामने से श्राप मिला, लेकिन जितने भी भक्त हैं, चाहे वो गजेंद्र हो, चाहे वो परीक्षित महाराज हो, चाहे वो चित्रकेतु महाराज हो, चाहे वो जो भी है, बहुत सारे एग्जाम्पल आपको भागवत में मिलेंगे पढ़ने के बाद। सबसे बड़ा शिक्षा प्रदेश इसके अंदर भाव यही है कि इन्होंने उस क्रोध को, उस कोप को स्वेच्छापूर्वक स्वीकार किया, राइट? ऐसे नल कुबेर को श्राप मिला, नारद जी उधर से जा रहे थे, नल कुबेर नहा रहे थे, तो नल कुबेर को, और उसमें ड्रिंकिंग भी किया था, उन्होंने कुछ समझ में नहीं आ रहा था, नारद जी ने कहा कि तुम्हारा जो चेतना है वो जड़वत हो गया, वृक्ष की भांति हो गया, तुमको कुछ लाज शर्म नहीं है, जाओ तुम वृक्ष बन जाओ। तो शायद हम लोगों की स्थिति में जैसे भक्त होते तो कह सकते थे कि आप साधु हैं, आप महात्मा हैं, और आप देख रहे हैं कि इधर स्त्री और पुरुष निर्वस्त होकर नहा रहे हैं, तो आपको इधर से ही आना था क्या, आप दूसरा से नहीं जा सकते थे क्या, राइट? बहस कर सकते थे कि आपको इधर आने की क्या जरूरत थी, सब पिकनिक स्पॉट है, राइट? आप इधर क्यों आते हैं, बोल सकते थे, लेकिन नहीं। जितने भक्तों का वृत्तांत है उन्होंने जीवन में एज इट इज श्राप मिला, हरे कृष्ण, स्वीकार कर लिया। और प्रभुपाद जी बहुत अच्छी बात लिखते हैं, ये 14 नंबर श्लोक है, 11 नंबर श्लोक में बहुत सुंदर बात लिखते हैं प्रभुपाद जी, लिख रहे हैं कि यह भक्त के सोचने का एक व्यवहारिक उदाहरण है। वह जीवन की किसी भी असफलता को भगवान का आशीर्वाद मानता है, अतएव वह इन सभी असफलताओं में क्षुब्ध न होकर अपने भक्ति कार्यों में लगा रहता है, वो क्षुब्ध नहीं होता है, विचलित नहीं होता है, वो स्वीकार कर लेता है। जैसे कि चित्रकेतु महाराज को जब पार्वती जी ने श्राप दिया, चित्रकेतु जी ने स्वीकार किया और चले गए। बाद में शिव जी पार्वती जी को बोलते हैं कि देखो ये भगवान विष्णु के भक्तों की महानता, इसके अंदर इतनी शक्ति है कि आपके श्राप का प्रतिकार कर सकता है, ये इतना महान भक्त है कि आपको भी श्राप दे सकता है, लेकिन यह है भक्तों की महानता कि भक्त कभी क्षुब्ध नहीं होते हैं, विचलित नहीं होते हैं किसी भी स्थिति में, वो किसी भी स्थिति में रहते हैं लेकिन वो भगवान का कृपा भगवान का आशीर्वाद मान के ही चलते हैं कि ठीक है भगवान का कृपा भगवान की जैसी इच्छा। और यही चीज यहाँ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि यह भक्त के सोचने का एक व्यवहारिक उदाहरण है, वह जीवन की किसी भी असफलता को भगवान का आशीर्वाद मानता है, अतएव वह इन असफलताओं से क्षुब्ध न होकर अपने भक्ति कार्यों में स्थिर रहता है, वो क्षुब्ध नहीं होता, विचलित नहीं होता। कठिनाई आ सकती है, कभी कभी हम मंदिर में रहते हैं और हमारे जीवन में, आपके जीवन, सबके जीवन में हो सकता है, कभी कोई वैष्णव हमको डांट सकता है, हाँ नाराज हो सकता है, बहुत कुछ कह सकता है, लेकिन यहाँ ये वृत्तांत सीखने को हमको मिल सकता है जीवन में। या प्रभुपाद जी भी इसी बात को लिख रहे हैं, या जीवन जैसे कि मैंने बताया भक्तों के जीवन के उदाहरण में भी यही सीख मिल रहा है कि हमको शिक्षा से स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि यदि हम गुरु वैष्णव साधु के क्रोध को स्वीकार करते हैं अपने जीवन में तो उससे क्या होता है, ये प्रभुपाद जी आगे लिख रहे हैं। क्षुब्ध न होकर अपने भक्ति कार्यों में लगा रहता है तो कृष्ण उसकी रक्षा करते हैं तथा भगवत धाम वापस जाने में उसे सक्षम बताते हैं। यदि भक्त को अपने विगत दुष्कर्मों के फल भोगने भी पड़े तो मान लो भक्त रहता है और भक्त अपने स्वभाव के कारण, अपने नेचर के कारण कुछ ऐसे कर्म करता है, कुछ ऐसे कार्य करता है जिससे उसके जीवन में दुख आता है, कठिनाई आती है, और उसके लिए कोई वैष्णव कोई गुरु उसको डांटता है या समझाता है, और वो भक्त यदि समझदारी दिखाते हुए सकारात्मक रूप में उसको अपने जीवन में लेता है तो क्या होता है, तो बोल रहे हैं कि भगवान, क्योंकि अल्टीमेट सब निर्णय तो भगवान के हाथ में है, भक्त को निकालना है, रखना है, सुधारना है, क्या करना है, अंतोकथा सब कुछ भगवान के हाथ में रहता है। तो बोलते हैं कि यदि भक्त इन सब स्थितियों को यदि अनुकूल भाव से स्वीकार करता है तो भगवान क्या करते हैं, तो भगवान कहते हैं कि बहुत थोड़े में, बहुत हल्के में उस पाप कर्म का फल चखा के उसको वापस कर लेते हैं, वापस ले लेते हैं, बहुत थोड़े में यदि अनुकूल भाव स्वीकार करता है तो उसको कष्ट मिलेगा, थोड़ा अपमान मिलेगा, थोड़ा निंदा मिलेगी, थोड़ा भक्ति डगमग होगा, माइंड स्थिर नहीं रह पाएगा, बुद्धि विचलित हो जाएगी, निर्णय नहीं ले पाएगा, लेकिन वो स्थिर है, वो भगवान से प्रार्थना कर रहा है, वो भक्ति में लगा हुआ है, तो भगवान क्या करेंगे, फल तो मिलेगा क्योंकि अपराध किया है, पाप किया है, लेकिन बहुत हल्के में उसके पाप कर्मों का फल चखाएंगे और उसको फिर वापस शुद्ध करके ले लेंगे। ये कभी होगा जब भक्त अनुकूल भाव से स्वीकार करेगा, यदि प्रतिकूल भाव से स्वीकार कर लिया, राइट, ये मंदिर नहीं दूसरा मंदिर देख लेंगे, मालूम है आप कितने बड़े साधु हैं, भाषा निकल जाती है क्योंकि हम प्रकृति के तीन गुणों के अधीन हैं, अभी हम साधना भक्ति में लगे हुए हैं, तो साधना भक्ति अवस्था में वैदिक भक्ति का नियम पालन करते हुए ये सब चीजें हो सकती हैं, लेकिन यहाँ शिक्षा ये मिल रही है क्योंकि भागवत की जो शिक्षा है, गीता की जो शिक्षा है, वास्तव में ये सब हम लोग के जीवन के लिए है, हम लोग के जीवन को पवित्र करने के लिए है, हम लोगों को लाभ लेने के लिए, हम लोगों को शिक्षा लेने के लिए। तो हर एक स्टोरी का, हर एक कथानक का कुछ न कुछ शिक्षा है, कुछ न कुछ प्रयोजन है। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि यदि भक्त को अपने विगत दुष्कर्मों के कारण जीवन में कुछ दुख या कठिनाई आती है और यदि उसको स्वेच्छा भाव से, अनुकूल भाव से स्वीकार कर लेता है तो भगवान क्या करते हैं, बहुत हल्के में, बहुत छोटे में उसके पाप कर्म की सजा देकर उसको फिर वापस कर लेते हैं, वापस ले लेते हैं। अतएव मनुष्य को भक्ति में दृढ़ रहना चाहिए, किसी भी अवस्था में भगवान के प्रति प्रार्थना है, नाम है, जप है, चार नियम है, ये सबको दृढ़ता से पकड़ के रखना चाहिए। हाँ, वेग आएंगे और वेग चले भी जाएंगे, वेग कभी स्थिर नहीं रहेगा, सिद्धांत वही जाएगा, कौन सा कि समय बीत जाएगा, कोई भी समय एक जैसा नहीं रहेगा, यदि आज कठिनाई आई है तो कल अच्छे दिन भी आएंगे, यदि आज अच्छे दिन है तैयार रहो कल कठिनाई भी आ सकती है, तो दोनों स्थिति में भगवान पे हमको निर्भर रहना है, भगवान की भक्ति नहीं छोड़ना है, गुरु और वैष्णव का आशीर्वाद कृपा नहीं छोड़ना है, क्योंकि यह जीवन बना के रखेंगे तो धीरे धीरे सब अनुकूल परिस्थिति आ जाएगी। भक्त को कभी भी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों से विक्षुब्ध नहीं होना चाहिए, अपितु भगवान पर ही पूरी तरह आश्रित रहकर अपने नियमित कार्यक्रम में आगे बढ़ाते रहना चाहिए। तो बहुत बड़े बड़े भक्त हैं लेकिन जीवन में कठिनाई आई है, दुख आया है, चाहे वो परीक्षित महाराज हो, चाहे जितने भी हमने नाम लिए, लेकिन एक बहुत ही मजबूत पॉइंट था उनके जीवन में कि भगवान के भक्ति का आश्रय उन्होंने नहीं छोड़ा था, भगवान कृपा का आश्रय नहीं छोड़ा था। उनको श्राप मिला फिर तुरंत बोले कि ठीक, हमारी मुक्ति का उपाय क्या है, मेरे से अपराध हो गया, ठीक है, अभी इसका उपाय क्या है कि मैं आपको प्रसन्न कर पाऊं, आपको खुश कर पाऊं, या कैसे कैसे मैं भगवान की भक्ति कर पाऊंगा, कैसे मैं जीवन में सिद्धि प्राप्त कर पाऊंगा। तुरंत उसी वैष्णव से पूछते हैं, फिर वही वैष्णव निदान भी देते हैं, ठीक है, नारद जी ने श्राप दिया, ठीक है, चलेगा, ओके, द्वापर युग आएगा, नल कुबेर बन जाओ, वृक्ष रहो, भगवान किसका दर्शन होकर आपका उद्धार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वैष्णव रुष्ट नहीं है, हमने उसको अपनी भक्ति से, अपने शरणागति से प्रसन्न कर लिया है। तो हमारे जीवन में भक्ति और वैष्णव का प्रसन्न रहना का इतना गहरा संबंध है, क्योंकि भक्ति हमारे सामर्थ्य की चीज नहीं है, भक्ति हमारे सामर्थ्य की चीज नहीं है, भक्ति कृपा की चीज है। कोई भी जीव भगवान का एक नाम हरे कृष्ण भी नहीं बोल सकता है यदि भगवान अंदर से प्रेरणा न दे, भगवान न चाहे तो। यदि हम 16 माला जप कर रहे हैं, नियम पालन कर रहे हैं, तो ये सब जो भी कर रहे हैं वास्तव में हम नहीं कर रहे हैं, उसके पीछे बहुत बड़ी कृपा है साधु की, वैष्णव की, भगवान की, जिसके द्वारा हम भक्ति के आदर्श, भक्ति के नियमों का पालन कर पाते हैं। किसी जीव में वो सामर्थ्य नहीं है कि भगवान का नाम, भगवान का भजन कर सके। ये जो जीवन है ये कृपा का जीवन है। गौर गोविंद महाराज बोलते हैं कि ये जो मोमेंट है, ये मोमेंट किसके लिए है? रोने का मोमेंट है, रोना है, क्राई करना है। कहाँ रोना है? बोलते हैं वैष्णव के चरणों में रोना है। जैसे भक्तिमन ठाकुर ने रोया है, नरोत्तम दास ठाकुर ने रोया है, ये लोग रोए हैं वैष्णव कृपा प्राप्त करने के लिए। तो वही मोमेंट है, हाँ, वही गोस्वामी गणों का मोमेंट है, वही शिक्षा हमारे जीवन में है। तो गौर गोविंद महाराज बोलते हैं कि एक दिस मोमेंट इज मोमेंट फॉर क्राइंग, ये रोने के लिए मोमेंट बना है, कृपा प्राप्त करने के लिए, आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भगवान को उनके सामने हमको रोना है। तो इस प्रकार गजेंद्र के जीवन में भी यही आया, लेकिन गजेंद्र ने अनुकूल भाव से स्वीकार किया। और भी एक यहां महत्वपूर्ण शिक्षा है, कौन से ऋषि थे जिन्होंने श्राप दिया वशिष्ठ इंद्रदुम को? अगस्त ऋषि। तो जब अगस्त ऋषि ने श्राप दिया तो श्राप दिया उन्होंने कि जाओ तुम हाथी बन जाओ। हाथी बन जाने का श्राप क्यों दिया? क्योंकि प्रायः हाथी बहुत विशाल जानवर है, बहुत बड़ा जानवर है, लेकिन उसका बुद्धि बहुत छोटा होता है, ज्ञान अज्ञानी प्राणी, गज 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 का दिमाग बोला जाता है, हाथी का दिमाग तो बहुत विशाल प्राणी है, लेकिन वो दिमाग से उतना स्ट्रांग नहीं रहता है, अज्ञान का प्रतीक है। जैसे हाथी का जो बच्चा होता है, तो हाथी के बच्चे को प्रारंभ में उसके पैर को बांधा जाता है और पैर से बांध के उसको फिर एक लोहे की जंजीर से बांध देते हैं, और धीरे धीरे वही हाथी जब बड़ा होता है तो जरूर जंजीर बांधते हैं, लेकिन वो हाथी को आप देखेंगे खूंटे से भी पेड़ लगा के बांध देते हैं, और हाथी पैर को, पैर की उसी सीमा रहती, उतना दूर लेके जाएगा उतना दूर लेके जाएगा, जितना दूर सीकर बना है हाथी के अंदर उतनी ताकत होता है कि पेड़ को भी उखाड़ सकता है। तो एक जहां वो बांधा गया है खूंटे के अंदर, उसको उखाड़ना उसके बस की बात नहीं है, लेकिन वो सीकर जो रस्सी बना होता है वो लेकर जाएगा, जब उसको खिंचाव होगा तो उसको लगता है भ्रम में पड़ा रहता है, क्योंकि बचपन से उसको ही भ्रम डाला गया है कि वो निकलेगा नहीं तुमसे। तो हाथी पैर वहीं तक लेकर आएगा, जब टाइट होगा तो रुक जाएगा, वो घुमाते रहेगा पैर को, उसको पता है कि ये मैं उखाड़ नहीं पाऊंगा। तो हाथी जो है वो अज्ञान का प्रतीक माना गया, क्योंकि उन्होंने भी अज्ञान दिखाया था इंद्रदुम्न महाराज ने। तो इस प्रकार एक शिक्षा यहां मिलती है कि हमारा अज्ञान ही हमारे भौतिक जगत में अस्तित्व का कारण है। उनको भौतिक जगत में आना पड़ा, कष्ट उठाना पड़ा, और भौतिक जगत का जो भी प्रारूप भगवान है, उन भगवान ने बनाया, उससे उनको गुजरना पड़ा। प्रारूप क्या है कि यही है कि यहाँ कोई भी चीज अस्थायित्व तो नहीं है। एक बार गजेंद्र के जीवन में क्या है, कितना बड़ा ऐश्वर्य है, पत्नी है, बच्चे हैं, सभी सुख सुविधा है, राजा है, सब लोग जी हुजूरी करते हैं, जिधर से गजेंद्र निकलते हैं जो उनको मानते हैं, जो उनको नहीं मानते हैं, सब लोग खड़े हो जाते हैं उनके सम्मान में। क्यों? क्योंकि नहीं मानने वाले को पता हो जाएगा तो गजेंद्र सजा दे सकता है, इतना बलशाली गजेंद्र है। तो इतना सब कुछ जीवन उनको मिला है, लेकिन क्षण भर में सब कुछ खत्म हो गया। परिवार, पत्नी, बच्चे, हित, रिश्तेदार, इतना बड़ा ग्रुप है, लेकिन कोई बाद में रक्षा नहीं किया। तो सब अवस्थाओं से उनको गुजरना पड़ा। तो अवस्थाओं से क्यों गुजरता है जीव? बोलते हैं क्योंकि अज्ञान में रहता है। इतना बड़ा जीवन में दुख आता है, दुख को, भार को वहन करता है, क्योंकि वो अज्ञान में रहता है। और वो अज्ञान की वजह से ही वो अपने भौतिक अस्तित्व को इस संसार में बना के रखता है। और गुरु हमारे जीवन में क्या करते हैं? गुरु की आवश्यकता क्या है? ओम अज्ञानति मिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया। मैं अज्ञान के अंधकार में भटका था, गुरु ने ज्ञान रूपी चक्षु देकर हमारी आंखें खोल दी। तो जीव यहां अज्ञान में भटका हुआ है। सबसे बड़ा अज्ञान क्या है जीव का? कि सबसे बड़ा जीव का अज्ञान है कि वह भौतिक चीजों को दिव्य मानता है और दिव्य चीजों को भौतिक मानता है। और यहाँ हम आध्यात्मिक जीवन में कैसे हमको इस रूप को समझना है, हम इस दृष्टिकोण में समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए एक कॉलेज में हम पढ़ते हैं और कॉलेज में कई तरह की पढ़ाई होती है। कॉलेज में पढ़ते हैं और मान लीजिए हमने देखा कि कोई गर्ल्स स्टूडेंट है और उसका कोई टॉवल गिर गया। प्रायः जब ग्रेजुएशन की पढ़ाई चालू होती है तो ये सब पढ़ाई चालू हो जाती है, चैप्टर अलग अलग जुड़ना शुरू हो जाता है। कभी जान उसे कोई पेन गिरा देता है, कोई टॉवल गिरा देता है उसके रास्ते में, बहुत सारा चीज। जो लोग, आप लोग तो पढ़े लिखे हो, सब देखते होंगे क्या क्या होता है। तो कभी किसी स्टूडेंट गर्ल्स स्टूडेंट का टॉवल गिर गया, कोई लड़का है उसको जाके क्या करता है, उसको उठाता है, राइट, उठाता है, सीने से लगाता है, गले से लगाता है और फिर ले जाकर उसको प्रेम से देता है। एकदम जैसा कि हम, तो बहुत ही आसक्ति उसकी होती है उस टॉवल में, उस रूमाल में। हाँ, ये आपकी चीज है, आपकी वस्तु है, बहुत संभार के लेके जाता है। यदि उस दिन नहीं मिली दूसरे दिन लेकर जाएगा, शायद उसको धोकर प्रेस करके लेके जाएगा देने के लिए, क्योंकि उसमें उसकी आसक्ति है, उसका कुछ उसको कुछ मिलने वाला है। भले ही वो टॉवल को कितने बुरी तरीके से यूज की हो, नाक पोछी हो, क्या क्या की हो, लेकिन हमारे लिए क्या है, एकदम दिव्य वस्तु है। इतना आसक्ति होता है, अटैचमेंट हो जाता है उससे। तो भौतिक चीज है लेकिन हमारा दृष्टिकोण क्या है, एकदम दिव्य बन चुका है उसके लिए। उसको ले कर देते हैं, इजहार करते हैं। और वही लोग मंदिर में आए, मंदिर में उनको भगवान का पुष्प दो, भगवान का सेंट लगाओ। हाँ, कभी कभी हम देखते हैं मंगला आरती में सबको सेंट ऑफर किया जाता है, फ्लावर ऑफर किया जाता है। तो कितने लोग आके बैठते हैं, उनको दिया जाता है, लेकिन वो लगाया, वो बस देखते हैं फिर नीचे कर लेते हैं, राइट। वो देखे सामने सुन रहा था, बस ऐसे करेंगे, वो डाल लेंगे, फूल मिलेगा रखेंगे, जेब में डाल लेंगे, राइट। तो उसके प्रति जो दिव्य वस्तु है, जैसे कि रूप गोस्वामी कहते हैं कि जो भी हमारे आचार लोगों ने ये सब चीज दिया है, ये कोई सामान्य चीज नहीं है। जो सुबह मंगला आरती में हमको सेंट मिलता है, जो पुष्प मिलता है, भगवान की प्रसादी माला मिलती है, ये सब कोई सामान्य चीज नहीं है। रूप गोस्वामी कहते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में कि जिससे मान लीजिए किसी व्यक्ति को, प्राचीन काल में जब किसी को सांप काटता था तो कुछ जड़ी बूटी सुनाई जाती थी, जड़ी बूटी सुहा को चिकित्सा किया जाता था, उपचार किया जाता था। उसी प्रकार हमको इस संसार में माया रूपी काले सर्प ने डस लिया है, और जब किसी को सर्प डसता तो क्या होता है, उसकी चेतना चली जाती है। तो हमारी भी वास्तविक चेतना लुप्त हो गई है, हम अपनी वास्तविक चेतना में स्थिर नहीं है, ये हमारी बिगड़ी हुई चेतना है, विकृत चेतना में हम स्थिर है क्योंकि माया रूपी सर्म ने डस लिया है। तो रूप गोस्वामी कहते हैं कि जिस प्रकार जड़ी बूटी सुंघा कर उसका उपचार किया जाता था, उस व्यक्ति का उपचार किया जाता था, उसी प्रकार जो भी भगवान से स्पर्श की हुई चीजें हमारे भक्ति जीवन में सब चीज आती हैं, ये सब हमको किस रूप में लेना चाहिए, बोलते हैं औषधि के रूप में लेनी चाहिए, उसको स्वीकार करना चाहिए। इतना दिव्य है कि सिर्फ भगवान का सेंट, भगवान का पुष्प, भगवान का चरणामृत, ये सब चीज स्वीकार करके हम उस माया रूपी विषैले सर्प के विष को हम निकाल सकते हैं। इस रूप में हमको जीवन में स्वीकार करना चाहिए, इतनी महत्वपूर्ण हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए, बहुत ही दिव्य चीज है ये, लेकिन हमारे लिए क्या होता है हा? तो जो भौतिक चीज है उसमें उनका इतना दिव्य भाव आता है, और जो दिव्य चीज है जिससे उनके आध्यात्मिक जीवन का पोषण हो सकता है उसके लिए कोई माने नहीं है। वो क्यों होता है, वह ज्ञान कराती है, ऐसा वह ज्ञान का आवरण है। तो इस प्रकार गजेंद्र को जो श्राप मिला, हाथी तुम हाथी बन जाओ, और हाथी जो प्रतीक है वो अज्ञान का प्रतीक है, और उस अवस्था से हम कैसे निकलेंगे, उस अज्ञान को कैसे पार कर पाएंगे, एक भजन में लिखते हैं, कली कुकुर कदन आदि चाहो है, कली कुकुर कदन आदि चाहो है। तो जैसे एक पागल कुत्ता होता है, और यदि पागल कुत्ता किसी को काट ले तो कुछ समय बाद वो भी पागल बन जाता है। तो इस कलयुग में समस्त जीवों की दशा ऐसी है, सभी लोग एक ही रोग से ग्रसित हैं, और वो रोग क्या है, कलयुग में प्रबल है आहार निद्रा भय मैथुन, प्रबल रोग से लोग ग्रसित हैं, सबको एक समान कुत्ते ने काट के रखा है, सबके अंदर वो विष व्याप्त हो चुका है। तो बोलते औषधि क्या है इसका, फिर इस रोग का निदान क्या है, तो कलयुग पावन कलि भय नाशन श्री शशिनंदन गाओरे, एक ही उपाय है कलयुग में जीवों को पति जीवों का उद्धार करने के लिए, उनको पवित्र करने के लिए शशिनंदन चैतन्य महाप्रभु का आशीर्वाद हुआ है, उनके पवित्र नाम का कीर्तन करो, उनसे कृपा की याचना करो, उनके पास बहुत ही सुंदर औषधि है, बहुत ही सुंदर मेडिसिन है। वो दवा क्या है, एने छी औषधि माया नसी बार लागी, हरि नाम महामंत्र लो तुम्हें मांगी। भगवान एक बहुत सुंदर औषधि, बहुत सुंदर दवा लेकर आए हैं जो वितरित कर रहे हैं, और उस दवा को खाने से क्या होगा, हमारा सब अज्ञान दूर हो जाएगा, हम दिव्य चीज को दिव्य रूप में समझेंगे और भौतिक चीज को भौतिक रूप में समझेंगे, जिस प्रकार साधना भक्ति के अंदर हम ये सब चीज सीखने का प्रयास करते हैं, राइट। हम दिव्य चीज को दिव्य धरातल पर लेते हैं और भौतिक चीज को भौतिक धरातल रखने का प्रयास करते हैं कि हमारे भक्ति जीवन के लिए ठीक नहीं है, नहीं चाहिए, ये हमारे भक्ति जीवन के लिए अनुकूल है, हमको चाहिए, कैसे, ये चैतन्य महाप्रभु कृपा के द्वारा प्राप्त हुआ है जीवन में। तो इस प्रकार भगवान और गुरु की कृपा से, भगवान की कृपा से गजेंद्र अज्ञान का प्रतीक था, हाथी का शरीर मिला हुआ था, गस था, लेकिन भगवान की कृपा से भक्ति में उसकी मति दृढ़ थी, उसने भगवान का भक्ति किया था, वैष्णव अपराध नहीं किया था, वैष्णव निंदा नहीं किया था, जिसके कारण अंत में भगवान ने उसकी रक्षा किया, गजेंद्र की रक्षा हो गई। अब ये वृत्तांत चल रहा है, गजेंद्र की रक्षा हो गई, गजेंद्र को मुक्त करने के बाद भगवान अपने वाहन गरुड़ पे चढ़े और चढ़कर जाने लगे। एतन महाराज तवे ऋतो मया कृष्णानुभावो गजराज मोक्षणम स्वर्ग्यम यशस्य कलिकल्म सापहम दुह स्वप्न नाशम कुरुवर्ण्य शिड़वताम। तो आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, एतन महाराज तवे ऋतम मया कृष्णानुभावो गजराज मोक्षणम, कि गजराज का मोक्ष कर दिया, गजराज का उद्धार कर दिया, किसने कर दिया, बोलते कृष्णानुभावो, उस भगवान श्री कृष्ण ने जो अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कृष्णानुभावो, उसका शब्दार्थ लिखते हैं प्रभुपाद जी, भगवान कृष्ण की असीम शक्ति। वो असीम शक्ति क्या है, कि ऐसे भगवान जो अपने भक्तों के लिए कुछ भी करने का सामर्थ्य रखते हैं, कुछ भी करने का सामर्थ्य रखते हैं, अर्थात यहां भाव है गजेंद्र एकदम खत्म होने वाला था, अंतिम अवस्था थी, एकदम डूब चुका था, अंतिम अवस्था में उसने भगवान का स्मरण किया था, और ऐसे डूबते डूबते उसने कमल का फूल उठाया था, सब आसरा चला गया था उसके जिंदगी से, बचने कोई संभावना नहीं था, इतना मृत्यु के कगार पे गजेंद्र था कि भगवान को, जैसा कि आप टीकाकार कहते हैं, आप लोगों ने सुना होगा कि भगवान को गरुण, जो कि गरुण का स्पीड मन के स्पीड से भी तेज है, राइट। मन कितना तेज भागता है उससे कहीं तेज गरुण भागता है, और भगवान को गरुण का स्पीड भी कम लगा था। भगवान प्रभुपाद जी ने जो फोटो बनाया है, प्रभुपाद जी की इस लीला के ऊपर जो फोटो बना हुआ है भागवत में, देखेंगे कि भगवान बैठे नहीं है, भगवान खड़े हैं और एकदम कूदने की पोजीशन पे छलांग लगा रहे हैं। अर्थात भगवान को गरुण का स्पीड भी कम लग रहा था, कह रहे वो डूब जाएगा। अर्थात यही भाव यहां ले रहे हैं, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जो अपने भक्तों के लिए कुछ भी करने के लिए वो तैयार है और विजयी हो जाते हैं, और रक्षा कर लेते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण। इसी भाव को बहुत ही सुंदर एक मुकुंद माला स्रोत में महाराज कुलशेखर जी लिखते हैं, यही भाव है। मा भीर मंद मनो विचिन्त्य बहुधायामिश्चिरं यातना नैवामि प्रभवन्ति पापरिपवः स्वामो स्वामी ननु श्रीधरः आलस्यं व्यपनीव भक्ति सुलभं ध्यायस्व नारायणं लोकस्य व्यसना व्यसनापनोदकरो दासस्य किं न क्षमः। कि भगवान के अंदर कितनी करुणा है, कितनी दया है, कितने महान है भगवान, कैसे भक्तों की रक्षा करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो कुलशेखर जी बोल रहे हैं, मामिर मंद मनो विचिन्त बहुधा यामिश्चिरम यातना। अरे हमने जीवन में बहुत कष्ट किया है, बहुत पाप किया है, अभी हमको मृत्यु के समय यमदूत नरक में लेके जाएंगे और बहुत दुख देंगे, बहुत तकलीफ देंगे। तो यहाँ लिख रहे हैं, अरे मूर्ख मन, तुम यमराज द्वारा दी गई सारी यातनाओं के बारे में बार बार सोचना बंद कर दे कि ये बहुत दुख देंगे, बहुत तकलीफ देंगे, खौलते हुए तेल में उबालेंगे, कोल्हू के अंदर पीसेंगे। यदि आपने जीवन में दुख किया है, पाप किया है, तो अभी तो पता नहीं था, लेकिन पता चला भागवत सुन के कि बहुत तकलीफ मिलने वाला है, बहुत दुख मिलने वाला है। तो कुलशेखर जी बोल रहे हैं, डर मत। क्यों नहीं डरूं? क्योंकि नैवामी प्रभवंती पाप रिपवह स्वामी ननु श्रीधर पाप रिपवह। कि जो पाप के शत्रु हैं, पाप के शत्रु कौन है? भगवान। नाम अजामिल ने बहुत पाप किया, विष्णुदूत यमदूतों से पूछ रहे हैं, ठीक है, यमदूत बोल रहे हैं कि आप क्यों ऐसा काम कर रहे हो, आप देखने में बहुत सज्जन लगते हो, कोई सामान्य धरातल वाले व्यक्ति नहीं लगते हो और बुद्धिमान भी लगते हो, तो इस पापी का क्यों बचाना चाहते हो? धर्मराज ऋषि कार्य में, धर्मराज यमराज जी के कार्य में आप क्यों हस्तक्षेप कर रहे हो, ये आपको शोभा नहीं देता है। तो विष्णुदूत ने कहा, ठीक है, यदि आप यमराज जी के आप अपने ये बताते हो तो हमको धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या, इसकी व्याख्या करो। बहुत सुंदर व्याख्या किया धर्म के अनुसार, जो शास्त्रों में दिया गया धर्म है, जो शास्त्रों में दिया गया वो धर्म है, पाप पुण्य का सबका व्याख्या किया। फिर अंत में विष्णुदूत क्या निष्कर्ष देते हैं, इतना कुछ व्याख्या किया लेकिन तुमको पता नहीं कि जिसने भगवान का नाम लिया वो समस्त पापों से मुक्त हो चुका है। जिसने भगवान का आश्रय लिया, भगवान का नाम लिया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो भगवान के नाम की महिमा आपको पता नहीं है? तो मानो लोगों ने बोला, ठीक है, उस समय मैं सो गया था जब नाम की महिमा का व्याख्या हो रहा था, नहीं समझ पाया, ठीक है जाओ सुनो, इसको छोड़ दो, इसको लेकर जाने का प्रयास मत करो, जाओ और पहले यमराज जी से पूछो कि नाम की महिमा क्या है। फिर उन्होंने नाम की महिमा बताया है, बाद में यमराज जी ने प्रवचन दिया है। तो यही यहां बता रहे हैं, पाप परिपव है, कि बहुत पाप किया लेकिन तुमको पाप परिपव, जो भगवान कृष्ण है, भगवान है, जो पाप के शत्रु हैं, जिनके पास पाप जा भी नहीं सकता है, क्या उनके ऊपर तुमको भरोसा नहीं है अभी कि तुमको पाप से बचा लेंगे? तुम डर रहे इतना, डरो मत, उनके विश्वास रखो कि आपको बचा लेंगे, डरने की जरूरत नहीं है। नैवामी प्रभवंती, कोई भी पाप अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता उनके सामने, डरने की जरूरत नहीं है, सब लोग जाने के पास डरते हैं उनके पास, कोई भी पाप के अंदर शक्ति नहीं है कि उनको पराजित कर दे, वो आपको मुक्त कर देंगे, घबराने की बात नहीं है। आलस्यम व्यपनीव भक्ति सुलभम ध्यायस्य नारायण, बस क्या करो, जीवन बहुत पाप किया है ना, नो प्रॉब्लम, डरो मत, करना क्या है, आलस्यम व्यपनीयम, आलस्य को छोड़ दो, आलस्य को त्याग दो, क्या करो, भक्ति सुलभम, जो भक्ति बहुत ही सुलभ है, हर जगह मिल रहा है आपको, भगवान के नाम की महिमा, मंदिर, प्रसाद, इसमें आप लग जाओ, सुलभम ध्यायस्य नारायणम, और सदैव भगवान नारायण का ध्यान करो, उनका चिंतन करो, हाँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और यदि तुम इतना करते हो ना, क्या आलस छोड़ना है, भगवान का भक्ति करना है, उनका चिंतन करना है, उनका मनन करना है। लोकस्य व्यसना पदोद करो दासस्य किम न क्षम। शास्त्र भरा हुआ है, भागवत भरा हुआ है कि भगवान ऐसे दास के लिए, ऐसे भक्त के लिए भगवान क्या क्या नहीं कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते भगवान अपने भक्तों के लिए। तुम भगवान का भक्त बन गया, तुमको डरने की जरूरत नहीं है, सोचने की जरूरत नहीं है, सब भूल जाओ, सिर्फ भगवान का भजन करो। ऐसा मत डरो कि अरे नरक में जाना पड़ेगा, कुछ नहीं, कोई नहीं नरक में लेके जा सकता आपको। सब छोड़ो, आलस छोड़ के भगवान का भजन करो, डरने की जरूरत नहीं है। यही चीज यहां बता रहे हैं, कृष्णानुभाव, जो अपने भक्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कृष्णानुभाव उनके अंदर इतनी शक्ति है कि सबको पराजित कर सकते हैं भगवान। और कली कलमस आपहम दुःस्वप्नासम कुर्वैव सिड़वताम। और क्या करना चाहिए, फिर आगे बता रहे हैं राजा परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी, कली कलमस आपहम, ये कलियुग दोषों का सागर है, दोषों से आवृत है, सर्वत्र दोषी दोष व्याप्त हैं कलयुग में। यदि आपको इस दोष से अपने आप को आवृत नहीं करना है, अपनी चेतना को दूषित नहीं करना है, तो क्या करना चाहिए, दुह स्वप्न नासम। ये जो भगवान की कथा है, अभी अभी जो कथा हुई गजेंद्र की, जो कथा हुई या और सारी जो कथाएं हैं, दुह स्वप्न नासम। दुह स्वप्न का अर्थ यहाँ पे है पाप, जिसकी वजह से हमको दुख मिलता है, जिसकी वजह से हमको दुख मिलता है। तो ये क्या है, दुह स्वप्न नासम, क्या है दुख का नाश करने वाला, क्या है, बोले कुर्य वर्ण सिड़वताम। ऐसी भगवान की कथाओं को सुनना चाहिए हमारे जीवन में, हमको इस गजेंद्र की कथा को सुननी चाहिए। यदि हम गजेंद्र की कथा को सुनेंगे या भगवान की कथा को सुनते रहेंगे तो हमारे जीवन में दुख नहीं आएगा। इसके बाद आता है आज का श्लोक जो 14 नंबर श्लोक से संबंधित है, यथानुकीर्तयन्त्यक्ते श्रेयः कामादुजातयः सूचयः प्रातुरुत्थाय दुह स्वप्नादुपशान्त। वही श्लोक का भाव है, बोलते हैं यथानुकीर्तयन्ते तत्। ऊपर बोल रहे हैं कली कलमसापहम दुह स्वप्ननाशम कुर्यवर्ण सिड़वताम। यदि कलयुग के दोषों से अपने आप को बचाना है तो ऐसे भगवान की कथा को सुनना चाहिए। जो ही श्लोक खत्म हो रहा है, श्लोक प्रारंभ हो रहा है और यहाँ बोल रहे हैं यथानुकीर्तयन, कथा सुन लिया नहीं, सुनते रहना चाहिए। अनुकीर्तयन, बार बार सुनते रहना चाहिए, अनुकीर्तयन शब्द आया है। यथा अनुकीर्तयन, अनुकीर्तन मतलब बार बार सुनना चाहिए। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में उसका भाव ले रहे हैं, अनुकीर्तयन मतलब जो हमने सुना है, अर्थात जो प्रामाणिक आचार्यों से प्रामाणिक कथा सुनी है उसी का कीर्तन करना चाहिए, वही सुनना चाहिए। प्रभुपाद जी पहले तात्पर्य में ये चीज लिखते हैं। यहां पर प्रयुक्त यथा अनुकीर्तयंती शब्दों से संस्तुत की गई है कि इस साहित्य को यथा रूप में प्रस्तुत किया जाए, किंतु ढोंगी लोग वास्तविक कथा से हटकर अपने व्याकरणिक व्याकजाल से मूल पाठ का मनमाना अर्थ निकालते हैं। इस तरह के हेर फेर से बचना चाहिए। यह वैदिक आदेश है जिसका समर्थन श्री सुखदेव गोस्वामी जैसे महाजन द्वारा किया गया है। वे कहते हैं यथानुकीर्तयंती, मनुष्य को चाहिए कि कोई हेर फेर बदल किए बिना मंत्र का यथारूप पाठ करे, सुने, प्रामाणिक स्रोत से सुने और प्रामाणिक कथा सुने। यहां कहां कुछ भी हमको नहीं सुनना चाहिए, किसी से भी नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि वो काम नहीं करेगा, वो उतना अनुकूल काम नहीं करेगा। भागवत की कथा सुने, गजेंद्र की कथा सुने, प्रहलाद महाराज की कथा सुने, ध्रुव महाराज की कथा सुने और प्रामाणिक स्रोत से सुने, प्रामाणिक व्यक्तियों द्वारा सुने। जैसे सुखदेव गोस्वामी प्रामाणिक मुझसे कथा चल रही है और यथा रूप में बिना किसी हेर फेर के। जैसे कि गीता में प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा था कितने प्रकार की गीता है, 400 प्रकार की कमेंट्री चल रही है, इतने लोग पढ़ के किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच रहे हैं, आप एक कन्फ्यूजन और क्यों देना चाहते हैं संसार को। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अभी तक तो जो गीता आई, गीता में लोगों ने गीता तो लिखा है लेकिन अपने भावों को प्रदर्शित किया है गीता का माध्यम लेके, लेकिन अभी गीता के द्वारा गीता के भाव को प्रदर्शित कर रहा हूं, उसमें भगवान क्या कहना चाहते हैं। अभी तक गीता का मर्म किसी ने नहीं दिया है, अभी लोगों ने गीता पे भाष से लिखा है लेकिन अपना मर्म, अपना भाव, अपना बुद्धि प्रयोग किया है। इतना इंटेलिजेंट बनने की जरूरत नहीं है, बुद्धिमान बनने की जरूरत नहीं है। बुद्धिमत्ता किसमें है कि जो भगवान कहना चाहते हैं, जो आचार्य कहना चाहते हैं उसको एज इट इज रिपीट कर दो। ये भगवद गीता यथा रूप है मेरी, जिसमें मैं भगवान के भाव को, भगवद गीता के मर्म को प्रदर्शित करूंगा। ये सब गीता से अलग है। तो यही चीज यहां बता रहे हैं अनुकीर्तयन कि सुनना है करना है लेकिन प्रामाणिक प्रामाणिक कथा सुननी है प्रामाणिक स्रोतों से सुनना है। यथा अनुकीर्तयन तत्स्रत कामा द्विजातय श्रेय कामा किसको सुनना चाहिए सब लोग नहीं सुनना चाहते हैं भगवान कथा सब लोग नहीं सुनना चाहते भगवान का नाम जब सब लोग नहीं करना चाहते हैं लेकिन इस संसार में रहते हुए जो लोग श्रेयस कामा मतलब जो लोग अपना वास्तविक कल्याण चाहते हैं अपना वास्तविक हित चाहते हैं उन लोगों के जीवन में भगवान की ऐसी कथा सुननी चाहिए उसका कीर्तन करना चाहिए। द्विजातय खासकर ब्राह्मणों को वैष्णवों को जिन्होंने भगवान को समर्पित किया है अपना जीवन जो जीवन में वास्तविक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं अपने जीवन का वास्तविक हित करना चाहते हैं ऐसे भक्तों का प्राण जैसे कि परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज कहते हैं कि भागवत क्या है तो महाराज कहते हैं कि भागवत भक्त का प्राण है। भक्तों को स्पेशली ब्रह्मचारी लोगों को भागवत को अपना प्राण समझना चाहिए इसके बगैर हमारा जीवन अधूरा है इसको अपना प्राण बना के रखना चाहिए क्योंकि यही एक रस है जो हमको जीवित रह सकता है। यदि संसार में हमारा भागवत का रस नहीं है गीता का रस नहीं तो हमारा जीवन भी नीरस है। ये जीवन देता है भक्तों को भी जीवन प्रदान करने वाला है भागवत। तो जो लोग अपना वास्तविक हित चाहते हैं जो अपना वास्तविक श्रेय चाहते हैं ऐसे भक्तों क्या करना चाहिए यथानुकीर्तयन्ते कि बार बार ऐसी भगवान की कथाओं को सुनते रहना चाहिए सुनना चाहिए। द्विजातय सूचयः प्रातरुत्थाय कब सुनना चाहिए बोलते हैं सतोगुण शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः काल उठ के प्रातःकाल उठ के और हम करते हैं हम आते हैं एक ही शब्द है यहाँ के गुरुगान हम करते हैं भगवान का भगवान के भक्तों का गुरुगान करते हैं मंगला आरती गाते हैं गुरु पूजा गाते हैं तुलसी माता की वंदना करते हैं तो वही भाव है। सुबह सुबह बोलते हैं सूचय प्रातः सुबह उठना उठ के नहा धोकर स्वच्छ होना नहा धोकर स्वच्छ होने के बाद अर्थात मंगला आरती में उठना कंपल्सरी एक तरीके से सुखदेव गोस्वामी का भाषा समझाता है बोलते प्रातः सूचय प्रातर उत्थाय सुबह आलस नहीं करना चाहिए। सुबह का जो समय है वो भगवान के लिए समय निर्धारित किया गया वो ब्रह्म मुहूर्त का समय है उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो सुखदेव गोस्वामी भी यहाँ आदेश दे रहे हैं कि सुबह हमको उठ जाना चाहिए मंगला आरती में हमको आलस्य नहीं करना चाहिए। सूचय प्रातर उत्थाय दुख सपना दुपाशांत दुख सपना तो जो हमारे जीवन में दुख आते हैं हमारे जीवन में दुख आते हैं राइट भले ही भक्त लेकिन हमारे जीवन में दुख आते हैं हम इसको इस रूप में ले सकते हैं। तो यहाँ सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि यदि आपको दुख से मुक्ति चाहिए आपको जीवन में दुख नहीं चाहिए आपको सुख और शांति चाहिए तो क्या करना चाहिए सुनना चाहिए। दूसरा चीज बता रहे हैं सूचय प्रात और उत्थाया सुबह उठ जाना चाहिए और उठकर आकर भगवान की लीलाओं का भगवान की कथाओं का भगवान की महिमा का गुणगान करना चाहिए जो हम मंगला आरती गुरु पूजा और श्रीमद भागवतम के रूप में करते हैं सवेरे सवेरे। यह है प्रामाणिक परंपरा जो हमारे आचार्यों ने हमको मॉर्निंग साधना के रूप में दिया है। तो कहा जाता है कि यदि कोई भी भक्त सुबह उठकर 4:30 से 9 बजे तक का साधना का धीरता से पालन कर ले तो बहुत भक्ति के जो 64 अंग है 64 अंग का पालन हो जाता है सिर्फ 4:30 to 9 के बीच में 64 अंग का पालन हो जाता है। और सुखदेव गोस्वामी भी इस चीज को इम्पोर्टेंस देते हैं इतने बड़े आचार्य जो बोल रहे हैं सूचाय प्रातः उत्थाय सुबह उठना नहा धो के स्वच्छ होना और इसके बाद भक्ति रूपी क्रियाकलापों में लग जाना यदि वो भक्त करता है तो उसके जीवन में क्या होगा दुख स्वप्न दुपशांत किसके जीवन से दुख निवृत्ति हो जाएगी दुख चला जाएगा और अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में और थोड़ा डिटेल में जाते हैं कि जिन्होंने गुरु का आश्रय ले लिया है दीक्षा ले लिया है अग्नि के सामने गुरु के सामने वैष्णव के सामने तो पुनः उनको पाप नहीं करना चाहिए क्योंकि वो रिस्की है गुरु के लिए भी और उस भक्त के लिए भी तो इससे बचना चाहिए 4 नियम पालन करना चाहिए नियम नहीं तोड़ना चाहिए। हरे कृष्ण श्रील प्रभुपाद की बताएं गौर प्रेमानंद आप लोग कोई कमेंट हो तो कर सकते हैं ऐसे ये श्लोक एक प्रभु जी देने वाले थे लेकिन अचानक उनका क्लास कैंसिल हुआ और पढ़ने के बाद मैंने भले ही व्यास आसन बैठकर बोला लेकिन वास्तव में ये सब शब्द एक सीनियर के वैष्णव से होना चाहिए सीनियर वैष्णव के मुख से निकलता और शोभा देता लेकिन हाँ प्रभु जी थोड़ा कमेंट करेंगे तमाल किश प्रभु माइक चाहिए तमाल किश प्रभु को माइक चाहिए लेकिन अभी अचानक बैठना पड़ा, कुछ था नहीं। यदि कुछ अतिशयोक्ति मैंने बोल दिया हो जिससे मेरी मर्यादा का व्यतिक्रम हुआ हो तो उसके लिए माफ करिएगा आप लोग। हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण। हरि बोल। आपने कहा कि हाथी अज्ञान का सूचक होता है, लेकिन गजेंद्र ने तो हाथी के शरीर से ही भगवान को प्राप्त कर लिया है और ग्राह को भी मुक्ति दिला दिया, स्वयं में मुक्त हो गया, तो कैसे कहा जा सकता है कि अज्ञान का सूचक है? ये तो ज्ञान का सूचक हो गया ना।
तो जहां तक मेरा सामर्थ्य है तो अज्ञान, हम सभी जीवात्मा अज्ञान में ही है, राइट। लेकिन गुरु और कृष्ण की कृपा से हमको ज्ञान प्राप्त होता है जीवन में और हम भगवान का स्मरण करते हैं। तो जब कौन से ब्राह्मण थे, मैं ब्राह्मण का नाम भूल जा रहा हूं, जिन्होंने श्राप दिया था, अगस्त, अगस्त ऋषि ने श्राप दिया था। अगस्त ऋषि ने भी यही कहा था ना कि तुम सम्मान करना नहीं चाहते हो, अज्ञान की तरह खड़े हो जाओ, तुम गज की तरह खड़े हो, दिमाग नहीं चला रहे हो, तुम गज बन जाओ। तो यदि उन्होंने भगवान का स्मरण भी कर पाए, क्योंकि भक्ति का कभी नाश नहीं होता है, उन्होंने पूर्व जन्म में भक्ति किया था और वो भक्ति जन जो सुकृति होती है, भक्ति जन सुकृति की वजह से जीव के अंदर ये, क्योंकि सामान्य धरातल पर तो सभी लोग अज्ञानी हैं, सभी लोग तमोगुण में रहते हैं, लेकिन भक्ति जन सुकृति के कारण धीरे धीरे जीवन में कुछ ऐसे मोड़ आते हैं जहां वो भगवान को स्मरण करने का, भगवान की भक्ति में लग जाने का दृढ़ निश्चय ले लेता है, वो भक्ति जन सुकृति के कारण होता है। तो उन्होंने भक्ति किया था और भक्ति जन सुकृति के कारण उनके जीवन में संयोग आया कि भगवान को स्मरण कर पाए। इतने समय तो स्मरण नहीं कर पाए थे, लेकिन अंत समय बहुत विपत्ति के समय, कष्ट के समय वो भगवान को स्मरण कर पाए। तो जहां तक हमको लग रहा है कि भक्ति जन सुकृति के कारण, आगे यदि आपको कुछ कहना है तो कहिए, क्योंकि मेरे पास जैसे ये भक्ति
कहने का भाव यह है कि जब राजा इंद्रद्युम्न ने अगस्त जी को प्रणाम नहीं किए,
हाँ,
तो यहाँ अहंकार प्रकट हुआ,
हाँ,
तो हाथी अहंकार का भी सूचक होता है। हाथी की दो दांते होते हैं ना, एक दिखावा के लिए, अंदर भी होते हैं ऐसे जो भी है, तो वो अहंकारी था। तो जो व्यक्ति अहंकारी होता है वो अगले जन्म में हाथी बनता है।
ओके।
तो अहंकार के चलते उनको हाथी योनि में आना पड़ा।
okay.
लेकिन जैसे गजेंद्र जी का भी हाथी का सुण है, तो क्या वो अज्ञानी है? उस शरीर से तो भगवान की भक्ति करते
हैं। इस संदर्भ में देखा जाए तो अहंकार तो सबसे बड़ा अज्ञान है, क्योंकि अहंकार मतलब अज्ञान।
अहंकार तो दो प्रकार के होते हैं ना, उसी अहंकार से तो भगवान को प्राप्त कर ले उस हाथी के शरीर में।
वास्तविक अहंकार है वो,
हाँ,
लेकिन पूरा संसार मिथ्या अहंकार में फंसा हुआ है, उसी का ज्ञान बोलते हैं।
कहने का भाव यह है कि सभी हाथी एक समान नहीं होते हैं। जैसे कि शास्त्र में बोला गया कि स्त्रियों की बुद्धि कम होती है, तो सारी स्त्रियों की तो बुद्धि कम नहीं होती है। गोपियां तो सबसे बड़ी बुद्धिमान थी, उद्धव जी को भी उन्होंने प्राप्त कर दिया। तो सामान्य जन के लिए बातें कही गई हैं और अगस्त जी की कृपा हो गई उनके ऊपर, जैसे भी हो, और भक्ति के प्रभाव से मतलब उस शरीर से भी वो भगवान को
स्मरण कर
प्राप्त कर लिया। ठीक है। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की गौर प्रेमानंद है।